नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में बिहार के कई संस्थान शामिल, आईआईटी पटना देश भर में 34वें स्थान पर। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और राज्य में हो रही भारी बारिश के कारण प्रदेश की अधिकांश नदियां खतरे के निशान के पार, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टेलीविजन चैनलों को आपदाओं के वीडियो तारीख और समय के साथ दिखाने का परामर्श जारी किया। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, प्रदेश में 770 दंत चिकित्सकों समेत 45,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। अब समाचार विस्तार से। समग्र श्रेणी में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में बिहार के शिक्षण संस्थानों ने बेहतर स्थान प्राप्त किया है। सूची में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी पटना को 34वां और एनआईटी पटना को 55वां स्थान मिला है। प्रबंधन वर्ग में बोधगया स्थित आईआईएम को 35वां और विधि वर्ग में चाणक्य नेशनल लॉ विश्वविद्यालय को 30वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही सूची में पटना एम्स को 26वां स्थान मिला है। कृषि क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय पूसा ने 29वां स्थान हासिल किया है। वहीं पटना वीमेंस कॉलेज ने भी इस सूची में शीर्ष 300 महाविद्यालयों में अपना स्थान बनाया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली में ये रैंकिंग जारी की।
अभी तक इसको मिला के 9th एडिशन की एनआईआरएफ की रैंकिंग हुई है। 16 कैटेगरी में इस बार रैंकिंग किया गया, 3 नए कैटेगरी को इस बार जोड़ा भी गया है। आने वाले दिनों में रैंकिंग बहुआयामी हो उसको भी ध्यान रखा जाएगा। जो एक्रेडिटेशन प्रोसेस है उसमें भी काफी रिफॉर्म किया गया है, काफी उसको ट्रांसपेरेंट किया गया है।
इस सूची में देश के 58,000 से अधिक शिक्षण संस्थानों में से 6,500 संस्थान शामिल किए गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दूसरे स्थान पर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई तीसरे स्थान पर है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और उत्तर बिहार के मैदानी इलाके में भारी वर्षा के कारण गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा और कोसी समेत कई नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है। इन सभी नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है। वैशाली जिले के लालगंज और मुजफ्फरपुर के रेवा घाट में गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में लाल निशान से 22 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी का जलस्तर पटना के दीघा घाट में 23 सेंटीमीटर, गांधी घाट में 82 सेंटीमीटर और हाथीदह में लाल निशान से 64 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को खतरनाक घाटों को चिन्हित कर वहां लाल कपड़ा लगाने के निर्देश दिए हैं। भागलपुर के कहलगांव में भी गंगा नदी खतरे के निशान से 39 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा नदी में उफान के कारण भागलपुर के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है।
भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत रत्तीपुर बैरिया, अजमेरीपुर, शंकरपुर बिंद टोली सहित आसपास के निचले इलाकों में गंगा का पानी फैल रहा है। वहीं शबौर कहलगांव के दियारा वाले इलाके में भी बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। लोग बाढ़ के संभावित खतरे को लेकर ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार।
इधर बक्सर में गंगा नदी का जलस्तर घटने से लोग राहत महसूस कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ से जुड़ी बीमारियों की आशंका को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने कहा है कि पानी निकलने के बाद दियारा इलाकों में होने वाली बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया गया है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव का भी निर्देश दिया गया है। इधर जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सभी स्थानों पर अधिकारियों को सतर्क रहने और आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। इधर बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खगड़िया में खतरे के निशान से 75 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। कमला बलान नदी मधुबनी के झंझारपुर में खतरे के निशान के आसपास बह रही है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान को पार कर गया है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से 125 सेंटीमीटर तथा कटिहार के कुर्सेला में 71 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। परमान नदी का जलस्तर अररिया में खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है। सुपौल में कटाव के कारण कई गांव कोसी नदी में समा गए हैं। एक रिपोर्ट।
जिले के किशनपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत मौजहा पंचायत में अब तक 200 से अधिक घर कटाव के वजह से कोसी नदी में समा चुके हैं, जबकि जिले के 5 प्रखंड सुपौल, सदर, किशनपुर, सरायगढ़, भपटियाही, मरौना और निर्मली में हजारों एकड़ में लगी फसल भी बाढ़ के पानी में जलमग्न होकर खराब हो चुकी है। इसी बीच कोसी बराज से 2,09,965 क्यूसेक पानी बढ़ते क्रम में छोड़ा गया है। वहीं नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र बराह से 1,49,075 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी।
खगड़िया में बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिला प्रशासन नदी के जलस्तर पर निगरानी रख रहा है।
बाढ़ से घिरे गांव तक आवागमन को लेकर नाव का परिचालन कराने के भी निर्देश दिए हैं। गुगड़ी के अनुमंडल पदाधिकारी सुनंदा कुमारी ने बताया कि फिलहाल जिले के सारे तटबंध सुरक्षित हैं और नदी के बढ़ते जलस्तर पर निगरानी रखी जा रही है। गंगा के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी से गंडक नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण खगड़िया प्रखंड के कई तटवर्ती गाँव से सटे दियारा इलाके पानी से घिर गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन।
पूरे प्रदेश में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज, सिवान, कैमूर, बक्सर और रोहतास में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पटना समेत शेष स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि इस अवधि में राज्य के उत्तर और दक्षिण पूर्व भागों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की भी आशंका है।
आज से अगले 48 घंटों के दौरान बिहार के अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा एवं उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम भागों के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा का भी पूर्वानुमान है। अगर राजधानी पटना की बात करें तो आकाश मुख्यतः बादल से आच्छादित रहेंगे और एक दो स्पेल में गरज के साथ वर्षा का भी पूर्वानुमान है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार, सीतामढ़ी और नवादा जिले में एक दो स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। कटिहार के कुर्सेला में सबसे अधिक 84.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना पर जा सकते हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों को परामर्श जारी कर कहा है कि वे आपदाओं और दुर्घटनाओं के वीडियो तारीख और समय के साथ दिखाएं। परामर्श में कहा गया है कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तब टेलीविजन चैनल कई दिनों तक लगातार ये खबरें दिखाते हैं, लेकिन बार बार दुर्घटना के दिन के दृश्य ही दिखाते रहते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि इससे अनावश्यक रूप से भ्रम की स्थिति पैदा होती है और दर्शकों में घबराहट होने लगती है। टेलीविजन चैनलों को यह सुनिश्चित करने की भी सलाह दी गई है कि वे दृश्यों को दिखाते हुए सबसे ऊपर तारीख और समय का उल्लेख करें ताकि दर्शकों को किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो सके। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर ग्राम बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस योजना के अंतर्गत आदर्श सौर ग्राम योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इसके लिए कुल 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत गांव की आबादी 5000 और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 2000 से अधिक होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रत्येक जिले के सबसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले विजेता गांव को 1 करोड़ रुपए का केंद्रीय वित्तीय सहायता अनुदान मिलेगा। इस वर्ष फरवरी में सरकार ने सौर छत क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाने और आवासीय परिवारों को बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस योजना को स्वीकृति दी है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि प्रदेश में 770 नए दंत चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। श्री पांडेय ने पटना के स्वास्थ्य भवन में एक समारोह में 52 औषधि निरीक्षकों और 10 दंत चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देने के बाद ये घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन नियुक्तियों के बाद प्रदेश में कुल औषधि निरीक्षकों की संख्या 140 हो गई है, जो देशभर में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग 45,000 से अधिक रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने तांती और तत्वा जाति को फिर से अत्यंत पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अनुसार तांती तत्वा जाति को अत्यंत पिछड़ा वर्ग के क्रमांक 33 पर दोबारा शामिल कर लिया गया है। जहानाबाद के मखदुमपुर प्रखंड के वाणावर स्थित सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में कल हुई भगदड़ की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। इस हादसे में 16 लोग घायल हुए हैं। वहीं जिलाधिकारी अलंकृता पांडेय ने बताया कि कल गंभीर रूप से घायल एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने कहा कि 11 अगस्त की रात लगभग 1 बजे स्थानीय विक्रेताओं और श्रद्धालुओं के बीच किसी मुद्दे पर विवाद के बाद यह हादसा हुआ था। उत्तर बिहार को जोड़ने वाले राजेंद्र सेतु के सड़क मार्ग के स्लैब की ढलाई के कारण आज रात 10 बजे से कल सुबह 6 बजे तक पूरी तरह से बंद रहेगा। इस दौरान आपात सेवाओं को छोड़कर आम वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। अरवल जिले में युवा खेल और संस्कृति विभाग तथा जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में हर घर तिरंगा सप्ताह के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। अब बिहार से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, राज्य में वक्फ संपत्तियों की अवैध खरीद बिक्री की जांच होगी। दैनिक जागरण ने पटना उच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, साक्ष्य के बगैर किसी कर्मी को दोषी नहीं ठहरा सकते। दैनिक भास्कर ने बांग्लादेश के राजनीतिक मामले को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, बांग्लादेश के गृहमंत्री बोले, भारत हमारा पड़ोसी, मदद करे, दखल न दे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में बिहार के कई संस्थान शामिल। IIT पटना देश भर में 34वें स्थान पर। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और राज्य में हो रही भारी बारिश के कारण प्रदेश की अधिकांश नदियां खतरे के निशान के पार। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी टेलीविजन चैनलों को आपदाओं के वीडियो तारीख और समय के साथ दिखाने का परामर्श जारी किया। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, प्रदेश में 770 दंत चिकित्सकों समेत 45,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।